धनंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान जब लीला करते हैं तो वे अपने लीला में सबको पात्र बनाते हैं। अब जो अयोध्या में जो लीला हो रही है, लीला में मंथरा का बहुत बड़ा हिस्सा है। मंथरा को भगवान ने लीला का पात्र बनाया। क्या भगवान की लीला है? लोग कैकेयी को दोष न दें, भगवान अपने लीला में अनुकूल प्रतिकूल प्रकार की संवादी विसंवादी घटनाओं के लिए अपने भक्तों को जिम्मेवार नहीं ठहराते। कितनी दया है भगवान की। इसलिए देवताओं ने भी निर्णय किया कि मंथरा की बुद्धि को फेरा जाए, क्योंकि उसमें भगवत भाव नहीं है। तुलसीदास जी ने तो साफ ही लिख दिया, चेरी होई की अबह की रानी, हम तो दासी की दासी रहेंगी, हम कोई रानी तो होने से रही, कौ नृप हो हमऊ का हानि, चेरी छाड़ी अब होवी की रानी। ऐसे तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि मंथरा है उसको अपने दासी पने में ही संतोष है, न तो राम के प्रति प्रेम है न उसका भरत के प्रति प्रेम है। अर्थात भगवान की ये देवताओं की माया है, ये जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं होता और भक्त के प्रति भाव नहीं होता, उसी के ऊपर ये माया चलती है। तो मंथरा ने मंथरा के विषय में विचार कर लिया, तो सरस्वती वहां से रवाना होकर अयोध्या पहुंची। अयोध्या पहुंच करके वो मंथरा के पास अव्यक्त रूप से उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गई। इधर मंथरा अपने कैकेयी के महल के ऊपर चढ़ गई। चढ़ करके देखती है कि सारी अयोध्या नगरी को बड़ा सुंदर सजाया गया है, खूब तोरण द्वार बनाए हैं, प्रत्येक महल पर, महल बोलते हैं सज्जनों ऊंचे मकान को, तो सब घरों के अंदर ऊंचे ऊंचे मकानों पर बड़ी बड़ी पताकाएं लगी हुई है। तो पास के महल पर एक धाय से उसने पूछ भी लिया, माता है किम नगरम समलंकृतम, आज क्या बात है, सारे नगर को क्यों सजाया जा रहा है, और बताओ तो सही, ये जो कौशल्या जी के यहां ब्राह्मणों की इतनी भीड़ लगी है, क्या कारण है, बड़ा उत्सव दिखाई दे रहा है। कौशल्या जी तो बड़ी हर्षित होकर अपने देखो उस महल के बाहर बैठी हुई ब्राह्मणों को खूब जो है दान दे रही है, क्या बात है। धात्री बोले तुम्हें पता नहीं मंथरे, कल राम का अभिषेक होने वाला है, उस खुशी में सारी अयोध्या झूम रही है, और कौशल्या जी के तो फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, ऐसा बस सुनना तो दर दर जल्दी 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 अपने सीढ़ियों से नीचे उतरी और दौड़ी दौड़ी सीधी कैकेयी के महल में गई। कैकेयी उस समय अपने पलंग पर बैठी हुई विश्राम कर रही थी, बड़ी प्रसन्न थी कैकेयी, और वो मंथरा महल में जाते ही जोर जोर से चिल्लाने की, क्या तुमको ये पलंग पर पड़े रहने की आराम करने की सूझ रही है, तुम्हारे पर बड़ा भारी भय आने वाला है, तुम अपने को जाने कितना सुंदर मानती हो, तुम हाथी की चाल से चलती हो, बड़ी मस्तानी चाल में चलने में अपने आप को गौरव मानती हो, तुमको पता है कि नहीं कल राम के राजा के अनुग्रह से राम को युवराज पद के ऊपर विराजमान किया जाएगा, और तुम यहां अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को नहीं देख रही हो, कांच में अपना मुंह देखती हो, बाल संवारती हो, क्या करता क्यों, ऐसे करके जोर जोर से बोली। केकी बोली, अरे हल्ला क्यों करती है, इतना शुभ समाचार सुनाती है और आंख निकालती है, डांटती है, भय दिखाती है, क्या भय तुमको, राम का अभिषेक होने वाला है, ये बात सत्य है ना, यदि ये बात सत्य है तो लो मंत्रे, ये सब हम तुमको मणियों का हार तुमको देते हैं। ऐसे पवित्र संवाद को सुनाते समय तुम्हारे मन में भय पैदा हो रहा है, क्या बात है, फिर भी कांपे जा रही हो, मेरा हार नहीं ले रहे हो तुम, क्या बात है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाई तो पूछने लगी ये केकई जी पूछने लगी, भरताद अधिक वो मेरा में, मेरे लिए तो भरत से भी ज्यादा राम है, बोल इसमें तेरा क्या कहना है, इसमें सदा मेरे पास रहता है, प्रिय बोलता है, कौशल्या से ज्यादा मुझे देखता है, सदा सुश्रूषते हिमा, मेरी सदा सेवा करता है, मेरे चरण बंदन किए बिना, मेरे चरणों को दबाए बिना कभी वो विश्राम नहीं करता है, उस राम के राज्याभिषेक पर तुमको इतना भय, मूर्ख क्या बात है, बोलो। अब जो है वो मंथरा अकारण वैरिणी, बिना किसी कारण से बैर रखने वाली मंथरा, वो कहने लगी कि दी ऐसी बात है, अब मैं क्यों भयभीत हो रही हूं जो सुनाती हूं, देखो सुनो, राजा सदा तुम्हारे साथ छल करता है, मैं राम के विषय में इतना चिंतित नहीं हूं, तुम्हारे अगल बगल का जो वातावरण उसको देखकर चिंतित हो रही हूं, राम का स्वभाव तो मुझे भी मालूम है, राम का स्वभाव किसी को कष्ट देने वाला नहीं है, पर क्या तुम राम को सदा स्वतंत्र मानते हो, राम के पिता दशरथ वो तुम्हारे साथ ऊपर ऊपर मीठी मीठी बात करते हैं, वो केवल तुम्हारे से मुंह रखते हैं परंतु कभी तुम्हारे से सत्य बात नहीं बोलते हैं, अपने मन की बात नहीं बोलते हैं, तुम्हारे महल में आएंगे चिकनी चुपड़ी बातें कर जाएंगे, तुमको खुश करके चले जाएंगे, देखो आज सारी अयोध्या को पता है कि तुम, सारी अयोध्या को पता है कि राम का अभिषेक होने वाला है, और तुमको इस बात का ज्ञान तुम्हारी दासी से हो रहा है, इसी से अनुमान लगाओ। वो सदा कौशल्या का ध्यान रखते हैं, कौशल्या का प्रिय होना चाहिए, तुम्हारे सामने स्वार्थ के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, देखा कितने चतुर हैं, राम का राज्याभिषेक कब किया जा रहा है, तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेजने के बाद किया जा रहा है, शत्रुघ्न भी चला गया, अब राम के लिए कौन बोलेगा, लक्ष्मण सवाल ही नहीं उठता, लक्ष्मण तो स्वयं चाहता है कि राम का राज्याभिषेक हो, सुमित्रा क्यों बोलने लगेगी, सुमित्रा के दोनों हाथ में लड्डू है, भरत का हो चाहे राम का हो, मेरा एक पुत्र भरत के साथ है और एक पुत्र मेरा राम के साथ है, तो लक्ष्मण तो सदा राम के साथ रहने वाला है ही, अतएव लक्ष्मण का राम का राज्य वो लक्ष्मण का ही राज्य होता है, अब क्या होगा मालूम है, राम राजा बनेंगे और भरत आएंगे, भरत को कहा जाएगा भरत राम तुम्हारा बड़ा भाई वो राजा, तुम उसके सेवक रहना चाहते हो, या रहना हो तो रहो, नहीं तो तुम और जगह चले जाओ, या तो उसको यहां से निकाल देंगे, यह राजा बनने के बाद नया षड्यंत्र रचा जाएगा, भरत के ऊपर न होने वाले आरोप लगाकर उसको प्राण दंड दिया जाएगा, और यह फिर और किसी बहाने से उसका त्याग कर दिया जाएगा। भरत यहां चैन से नहीं रह पाएगा, और आपको कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा। दासी के रूप में रहो तो रहो, नहीं तो आप अपने पीहर चली जाओ। अपने सौतों के अधीन रहने की अपेक्षा हे महारानी जी मरना बड़ा अच्छा है, जल्दी कोई उपाय कीजिए, समय निकल जाएगा। जो समय ठीक ढंग से काम में नहीं लेंगे तो वो समय निकल जाने के बाद वापिस जीवन में कभी आने वाला नहीं है। कल अभिषेक होगा, ये इतना आपको समय कोई विधाता की कृपा से मिल गया है महारानी जी। यदि आज अभिषेक कर देते तो आप क्या कर सकते थे। कल अभिषेक होगा, इस वाक्य में बहुत दूरी है, कल का दिन अभी बहुत बाकी है, कुछ विचार कीजिए। मेरे से पूछो तो आप ऐसा उपाय कीजिए कि सारा अभिषेक तो भरत के लिए हो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना हो। ये 14 वर्ष जो देखो मंथरा के मुख से निकले, तुलसीदास जी महाराज ने 14 वर्ष के लिए मंथरा से नहीं कहलवाया, वहां तो केकी के मुख से कहलवाया है। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बहुत देरी में बोली है वहां केके जी, या मंथरा जी बोल दिया। मंथरा जी ने कहा कि 14 बरस आपको वन में रहना पड़ेगा, 14 बरस राम को वन के लिए बोल देना। तथा रूढ़ो अभय पुत्रस्तव राज्ञी भविष्यति, 14 बरस तक जब आपका बेटा यहां अयोध्या में राज्य कर लेगा तो हे महारानी जी सब प्रजा राम को भूल जाएगी। और देखो राम कोई छोटे मोटे वन में नहीं जाना चाहिए, अयोध्या के पास के वनों में रहेगा तो सारी अयोध्या की सहानुभूति उनके साथ रहेगी, राम के साथ। इसलिए अयोध्या की सहानुभूति राम को न मिले इसलिए कोई उपाय सोचो। ऐसा उपाय तो मेरे पास भी एक मंत्र मेरे पास है उपाय। क्या उपाय है? एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के पास इंद्र आए थे, मालूम है, सहायता के लिए आए कि मेरी सहायता करो। तब दशरथ जी महाराज सेना सहित इंद्र के साथ गए। देखो एक बात बताए कि ये इंद्र कौन है, स्वर्ग का इंद्र नहीं है वो, क्योंकि स्वर्ग के शरीर और पृथ्वी के राजाओं के शरीर, पृथ्वी पर रहने वालों के शरीर अलग ढंग के होते हैं। तो ये कौन सा स्वर्ग है? ये पृथ्वी का स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग लोक का स्वर्ग है, स्वर्ग लोक का, ऐसे पृथ्वी पर भी स्वर्ग है। तो स्वर्ग लोक जो ये यहां पृथ्वी का स्वर्ग होता है वो भारतवर्ष को छोड़ करके बाकी जितने देश है वो स्वर्ग है, पर वर्तमान में जो नक्शा दिखता है वो भारतवर्ष है पूरा, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप वगैरह हो, ये सब हमारे ग्रंथों के अनुसार भारतवर्ष है। जैसा पृथ्वी का नाप तोल बताते हैं उसके अनुसार पूरी पृथ्वी भारतवर्ष है। अस्तु, तो इंद्र ने उनसे सहायता मांगी है, सेना के सहित महाराज दशरथ इंद्र की सहायता के लिए गए थे। बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, चलते चलते अकस्मात महाराज दशरथ के रथ की कील थी, वो कील निकल गई और वो पहिया रथ से बाहर निकलने ही वाला था कि तुमने बड़ी सावधानी से वहां अपना हाथ उस कील में दे दिया, कील वाली जगह, तो वो पहिया इधर सिरक गया। इधर सिरक जाने के बाद फिर जो है रथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने पर महाराज दशरथ ने देखा कि तुम्हारा हाथ कील की जगह गया हुआ है, तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, आश्चर्य भी किया और तुमको क्या कहा, केकई तुम वीरवती हो, शूरा हो और बड़ी बुद्धिमती हो, युद्ध के समय योद्धा को किस प्रकार से बचाना चाहिए ये तुम्हारा परिश्रम देख करके कितने मुग्ध हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुमको दो वरदान देता हूं, एक वरदान तुम्हारी इच्छा से और एक वरदान मैं अपनी इच्छा से तुमको देता हूं, तुम्हारी इच्छा से जो दो वरदान है तुम कोई दो वरदान मांग लो। तब आपने कहा कि हे प्राणनाथ, जब आप मुझे मिले हुए हैं तो मुझे वरदान आपसे बढ़कर थोड़े ही मिलेंगे, क्या आपकी शुद्ध नियत भावना है, आप तो पति को इतना चाहती हो। आपने कहा कि दोनों वरदान आपके पास सुरक्षित है, कभी समय आने पर मांग लिए जाएंगे। अब आज जैसा समय आपके जीवन में कभी आने वाला नहीं है, कितना विलक्षण आपके लिए मौका आया है। उसके बाद आप वहां से आ गए थे, अयोध्या में रहने लग गए, अब वो आज मौका है, आप अपने पति से वरदान मांगो। ऐसे मत मांगना, अभी दशरथ जी आएंगे और कहने मेरे दो वरदान लाओ, ऐसे करना ठीक नहीं है। पहले दशरथ जी का भाव मनाओ देने का, उनके मन में खूब देने की इच्छा हो तब मांगना। और देने की इच्छा कब होगी, जब तुम कोप गृह में जाकर बैठ जाओगी, तुमको वो कुपित नहीं देख सकते, तुमको दुखी नहीं देख सकते, इसलिए मलिन वस्त्र पहनो, जहां तहां अपने आभूषण बिखेर दो और वो जब तुमसे बात करने आए तो मुंह फेर लो, रोती रहो, कृत्रिम रो, बनावटी रोने से रो, चीख चीख करके रो, इतना रो इतना रो कि दशरथ जी का मन एकदम पिघल जाए। और पिघल नहीं जाए, यावत सत्यम प्रतिज्ञा है, जब तक वो सत्य की सौगंध न खाए तब तक तुम उनको रिझाती रहो, लेकिन अपने मन की बात मत बोलना। और जब वो पूर्ण रूप से खूब सी सत्य की प्रतिज्ञा करके कहे और रहने जाए उनसे कि भाई तुम बोलो, तुम्हारे जो कहोगे वो पूरा करेंगे, सत्य की सौगंध है, तब उसके बाद ये बात बोलना। बहुत अच्छी बात है, यही मौका है। और ये मौका चुकने के बाद फिर तुम्हारे कोई भी दो वरदान ले लोगे, वो वरदान तुम्हारे क्या काम आएंगे। राजा होने के बाद, राम के राजा होने के बाद तो तुम वरदान क्या मांगोगे, क्या कि राम राजा न रहे मांग सकोगी, दे सकेंगे। जो दशरथ जी के पास है वही तो दशरथ जी देंगे, वो कह देंगे मेरे पास युवराज पद रहा नहीं, मेरे पास अयोध्या का राज्य नहीं रहा है, उसमें से मांगो तुम वचनों में फंस जाओगे, आज ही मांग सकते हो, आज तो उनके पास युवराज पद है। बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा। अंधेरे में बैठी हुई थी मैं, तुमने हमारी बुद्धि में बहुत प्रकाश डाल दिया। ओहो, तुम बाहर से तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो पर तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुंदर है। बाहर से तुमको विधाता ने कुरूप इसीलिए बनाया है कि तुम्हारे अंदर की बुद्धि का सौंदर्य किसी को पता न चले, आज वो मेरे तुम्हारे बुद्धि का सौंदर्य काम आया है। हे सुंदरी, भरत राजा होगा, 100 गांव का मालकिन में तुम्हें बना करके रहूंगी, 100 गांव तुमको मिलेंगे, उनके ऊपर तुम राज्ञी बनोगी, तुम फिर दासी नहीं रहोगी, तुम भी एक राज्य 100 गांव की शासिका रहोगी। जाओ कोप भवन में जाओ महारानी जी, मेरे 100 गांव की चिंता मत करो, आप अपने अयोध्या की और विशेष करके भरत के राज्य की चिंता करो। केकई ने पूर्ण रूप से उसको इस ढंग से बोलना, उस लटके से बोलना, सब लटके सिखा दिए मंथरा ने केकई को। और फिर मंथरा तो अपने काम में लग गई और वो जाकर बैठ गई। ए मंथरे, मेरी बात पर विश्वास करना, यदि राम वन में नहीं गए देखो यहाँ ये नहीं कहा कि भरत राज गद्दी पर नहीं बैठेगा, यहाँ कहा यदि राम वन में नहीं गए तो मैं या तो प्राणों को त्याग दूंगी और प्राणास्तक से अथवा वक्रे सही से ताव देव ही, और या मैं यहां पृथ्वी पर पड़ी रहूंगी उठूंगी नहीं यहां से, राम वन में जाएंगे तभी मेरे प्राण बचेंगे या मैं उठ पाऊंगी। फिर कहा देख महारानी आप उसके वचनों में महाराज के वचनों में बिल्कुल मत फंसना, आप अपने निश्चय पर अडिग रहना, तनिक भी उनकी बातों में विश्वास कर लिया तो आज की घड़ी चूकने के बाद फिर ये समय मिलने वाला नहीं है। निश्चयम कुरु कल्याणी कल्याणम ते भविष्यति, इतना पवित्र काम है तेरा कल्याण होकर के रहेगा। इतना कहकर वो भी चली गई और वो अंदर चली गई वह गोप भवन में। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती देखा ना, दुनिया में चाहे कोई आदमी कितना ही धीरवान हो, कितना ही गुणवान हो, कितना ही दयावान हो, कितना ही नीतिज्ञ हो, कितना ही विधिवेत्ता हो, कितना ही वो विवेक संपन्न हो, लेकिन यदि दुष्टों के पापियों के संग में चला जाता है तब उसकी दुर्दशा हो जाती है। इस केके की बुद्धि कितनी राम के अंदर लगी हुई थी लेकिन मंथरा के संग के कारण से इसकी बुद्धि खराब हो गई। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि दुष्टानाम परित्याज्य है, दुष्टों का संग सदा ही त्याज्य होता है। दुस्संगी चवते स्वार्थात, जो आदमी दुस्संग में पड़ जाता है वो अपने परमार्थ रूप स्वार्थ से नीचे गिर जाता है। जैसे ये केकई कितनी नीचे चली गई। इधर तो ये हो रहा है, इधर राजा सबको कल के लिए व्यवस्था सुपुर्द करके खूब आनंद के साथ बड़े मन में प्रसन्नता लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है और अपने सेवकों के साथ केकी के महल में प्रवेश किए। पहल महल में प्रवेश करते ही सेवक अपने काम में लग गए और महाराज दशरथ उस महल में आगे बढ़े तो वहां सेवकों को नहीं देखा, किसी को पास में नहीं देखा। तो वो राजा विचार करते हैं क्या बात है, दरवाजे पर रोज केके मुझे मिला करती थी और बड़े स्नेह से आदर से मुझे ले जाती थी, हंसती हुई मेरे पास आती थी, केके यहां दिखाई नहीं दे रही है। चारों तरफ यूं देख दृष्टि डालते हैं, महारानी कोई आवाज नहीं आ रही है। इतने में ही कुछ दासियां आई नीचा मुख किए हुए, दासियों से पूछा कुतो वह स्वामिनी शुभा, अरे बताओ तुम्हारी स्वामिनी कहाँ चली गई, हमारे पास आगे लेने नहीं आई, हमारा स्वागत नहीं किया, क्या बात है। उन्होंने हाथ जोड़कर नीचे सिर करते हुए कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, महारानी जी कोप भवन में गई है। कोप भवन में क्या कारण है, कारणम न विद्महे, हमको कारण वारण का कुछ पता नहीं है। क्या बात है, हमको कुछ पता नहीं लेकिन कोप भवन में विराजमान है। राजा कोप भवन में गए, आप कोप भवन में जाए तो राजा ऐसे प्रेम से बोलते हैं तो जो है वो मुंह फेर लेती है, राजा उसके जो है शरीर पर हाथ रखते हैं तो हाथ को झटका देती है, किमसे से वसुधा पृष्ठ, अरे तुम इस पृथ्वी पर क्यों लेटी हुई हो, तुम्हारे लिए आराम के कितने साधन यहां जुटाए पृथ्वी पर, बोलिए मत फालतू की बात, मेरे सामने बोलने से कोई लाभ नहीं, ऐसे आंख निकाल करके बोलने लगी। अरे मैं तुमसे पूछता हूं इतने अच्छे आभूषण तुमने यहां क्यों फेंक रखे है, मलिन वस्त्र ये काले काले कपड़े क्यों पहन रखे है, हमारी बात का तो उत्तर दो, किमर्थम रूहि सकलम विधास्य, तब तुम क्या चाहती हो, तुम किससे नाराज हो। वो फिर मुंह फेर लेती, बोलती नहीं है। अरे बोलो भाई, किसको दंड देना है, किसका वध करना है? कोई अदंड्य व्यक्ति है और उसको दंड देना है तो मुझे बताओ, और कोई अवध्य व्यक्ति है और उसका वध करना है तो मुझे बताओ, किसी को फांसी का हुक्म दे दिया है और उसको बचाना है तो मुझे बताओ, किसी धनी आदमी को कंगाल बनाना है तो मुझे बताओ, किसी कंगाल को धनी बनाना है तो मुझे बताओ, क्षण मात्रेण, क्षण मात्र में ये सब काम कर दूंगा। परंतु बताओ तुझे, तुम बात, तुम्हारे मन की बात क्या है? अरे केकई, बोलो ना। तुम इतना उदास मन लेकर कभी बैठी नहीं, आज क्या बात होगी? मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? तुम अपने मन की बात नहीं बोलते हो? क्या बात है? मेरे जीवन में राम से बढ़कर कोई नहीं। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं कि जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। ये दशरथ जी महाराज एक साथ सब बात कह गए। फिर उसने धीरे धीरे दशरथ जी को देखना चालू किया और अपने आंसू पूछे, सब बनावटी, सब बनावटी आंसू। हाँ पूछी, रोने लगी, पर बताओ क्या बात है, अब तो बताओ, अब तो बताओ। सनैर विमृत जे नेत्रे, धीरे धीरे आंखें पूछी, लड़खड़ाती बोली में बोली और फिर कहने लगी, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, राम की सौगंध खाके बोलते हैं, तो मैं जो कहूं वो आपको शीघ्र करना ही पड़ेगा, और मैं आपको कोई आज किसी प्रकार से धोखा देकर नहीं बोलती हूं। मैं आज आपसे मेरी चीज आपसे मांगती हूं, मेरी चीज आपके पास धरोहर के रूप में है, वही तो मैं मांगने जा रही हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे नहीं देंगे, इसलिए मैं दुखी हो गई। वो मेरी चीज क्या है आप विचार कीजिए। याद करो आप देवासुर संग्राम को, वहां पर आपके उस रथ के अंदर मैंने रक्षा की थी और आपने मुझे दो वरदान दिए थे और मैंने वो दो वरदान आपके पास न्योछावर के रूप में रखे, न्यास के रूप में रखे। उन दो वरदान से मैं आज जो है कुछ चाहती हूं, दो वरदान चाहती हूं। दो वरदानों में पहला वरदान है, मेरा प्रिय पुत्र भरत इसी राज्याभिषेक सामग्री से अयोध्या का युवराज घोषित किया जाए, और दूसरा मेरा वरदान है कि राम यहां से दंडकारण्य में, यहां पास के जंगलों में नहीं, दूर दंडकारण्य के अंदर 14 वर्ष के लिए निकल जाए, परंतु राम कोई राजपुत्र होकर नहीं, न जाने किसी राजा के वहां ले जाकर रख दो कि 14 वर्ष तक तो मेरा युवराज तुम्हारे पास रहेगा, फिर वापस नहीं, ऋषि मुनियों के वेश में जाएगा, जंगलों में रहेगा, किन्हीं महलों में नहीं रहेगा, किसी गांव में नहीं रहेगा, जटावलकल वस्त्र धारण किए हुए रहेगा, कन्दमूल फल का भोजन करेगा 14 वर्ष। 14 वर्ष के बाद यदि उसको यहां जरूरत हो तो आ जाए, जरूरत न हो तो कहीं और जगह जाए तो जाए, यहां आकर महलों में भी रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और यदि वो स्वाभिमानी होगा तो यहां क्यों आएगा, कहे हम नहीं आते, नहीं आएगा तो बताओ, हम बुलाने नहीं जाएंगे। 14 वर्ष तक हमारा वरदान की सीमा है, उसके बाद हमारी कोई सीमा नहीं है। यदि किंचित विलंबित, यदि मेरी बात को मानने में आपने जरा सा भी विलंब कर दिया तो आपके सामने मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी, और इस बात के ऊपर मैं आपसे कोई नई बात सुनना भी नहीं चाहती हूं, आप मुझे कुछ भी मत कहना। केकई ने यह बात कही, बड़ी कठोरता से कही। महाराज दशरथ उस समय भगवान राम के प्रेम के अंदर आकुल व्याकुल हो गए। देखो दशरथ जी महाराज, यदि जरा से भी जो है राम जी के प्रेम में कमी रखते ना, तो वो यही कहते हैं कि भाई तुमने दो वरदान मांगे हैं, दोनों वरदानों को मैं सिद्ध करता हूं, पहले एक वरदान कर लूं फिर दूसरा वरदान कर लूंगा। तुमने पहला वरदान भरत का युवराज पद पर अभिषेक चाहा है ना, भरत को मैं कल ही बुला लेता हूं, उसका मैं राज्याभिषेक कर देता हूं, फिर मैं राम को वन में भेज देता हूं। यदि ऐसा दशरथ जी करते तो दशरथ जी के वचनों में कोई दोष भी नहीं आता, पर दशरथ जी ने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? दशरथ जी की बुद्धि भगवान के प्रेम के अंदर ऐसी बात सोच ही नहीं सकती, उनकी बुद्धि कुछ भी नहीं सोच सकी, जो राम जी चाहते वही बात पैदा होती है। यदि दशरथ जी के बुद्धि में जरा सी प्रेम की कमी होती तो ये बात पैदा हो जाती, और ये निश्चित बात थी कि भरत कभी युवराज पद पर होता नहीं और राम वन में जाते नहीं, सीता का हरण होता नहीं तो रावण का मरना होता नहीं। पर भगवान को तो राम कथा करनी है, भगवान को भरत का यश बढ़ाना है, राम जी को कोई थोड़ी बात थोड़ी करनी है, राम जी को तो यहां कई प्रकार की लीला करनी है। तो दशरथ जी के मन में ये बात भगवान ने उपजने ही नहीं दी, और दशरथ जी बड़े विलाप करने लगे, हाय हुई करने लगे और कहने लगे, किमिदम भाससे रे, क्या बोलती हो के कही, जब से तुम्हारे साथ हमारा विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तब से लेकर आज की घड़ी तक कभी भी किसी प्रकार से तुमने कभी कठोर वचन नहीं कहा। आज तुम एक साथ न जाने कितने वर्षों का जो स्नेह है उसको तुम बाणों से बींद बींद करके उस स्नेह को तुम तोड़ रही हो। लोग कहेंगे कि राम को किस अपराध से वन में जाने दिया, इसका क्या जवाब है? भरत का राज्याभिषेक, चलो अपने अपने पुत्र को सभी लोग अच्छे ऊंचे देखना चाहते हैं, इसमें तो कोई दोष नहीं, भरत को राज्याभिषेक में हम लोग शामिल कर लेंगे, राज्याभिषेक भरत का कर देंगे, राम को वनवासी समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहेंगे किस अपराध से राम को वन में भेजा, क्या बताओगी तुम? और आज तक तुमने राम का कितना गुणानुवाद गाया है, ममाग्रे राघवस्य गुणान वर्णयसी, रोज रोज तुम राम की महिमा बताती हो। आवे तब कह दो, आज राम ने ये किया, आज राम ने ये किया, आज राम को मैं ये मणि दूंगी, आज ये दूंगी, आज वो दूंगी। मेरे मन में तुमने जो राम के प्रति इतने गुणों का वर्णन करके स्थान जमाया, उसको तुमने अपने हाथ से जो है तुम राम को ही हटा रही हो। जैसे तुम्हारा मेरे पर अधिकार है, ऐसे कौशल्या का भी तो अधिकार है। कौशल्या मुझे पूछेगी कि मेरे बेटे को आपने वन में क्यों भेजा, क्या जवाब दूंगा? तुम कहा करती थी कि कौशल्या मुझे ने, राम मुझे में और कौशल्या में समानता देखता है, फिर भी मेरी सेवा ज्यादा करता है। तो केकई जरा विचार करो, क्रोध के अंदर आकर के और बुरे बुरे खोटे खोटे वचन तुम निकालती हो, ये क्रोध के वचन है तुम्हारे, केकई के वचन नहीं है। केकई के वचन तो बड़े मीठे हुआ करते थे, स्नेह भरे होते थे, तुम तो अपने वचनों से हमारे अंदर राम के प्रति स्नेह पैदा करने वाली बोलती थी, आज क्या हो गया? अनुग्रिणीस्व माम वहमे रामा नास्ति भयम तव, आज तक तुझे राम से कोई भय नहीं हुआ, आज क्या हो गया? इसलिए तुम जरा शांति से बात करो, क्रोध छोड़ करके तुम वरदान मांगो। भरत को राज्याभिषेक दे दिया हमने, जाओ दूसरा वरदान थोड़ा बदल करके मांगो। कैकेयी एकदम लाल आंखें करके कहने लगी, हे राजेंद्र, क्या आप मूर्ख हो, भ्रांत हो, क्या आपको होश नहीं है? किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राम की सौगंध खा करके आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हैं? यदि आप ऐसे करेंगे तो आप नरक की तरफ जाओगे, केवल वर्तमान का सुख मत देखो, भविष्य में क्या होगा। हम कहते हैं यदि राम वन में नहीं जाता है प्रातःकाल, तो ये केकई आपको जीवित नहीं मिलेगी, या तो मैं फांसी खा करके मर जाऊंगी या जहर खा करके मर जाऊंगी और आपके सामने मरूंगी और कहूंगी कि देखो आपको अपने वचन के पालन में कमजोर देखा है, इसलिए देखो मैं जहर खा करके मर रही हूं। दुनिया में तुमने क्या क्या, आपने क्या क्या प्रसिद्धि ले रखी है कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, मैं राम की सौगंध से जो बात कहता हूं वो सत्य है। रामो परितम शपतंच कृत्वा, राम की सौगंध खाई और आप ये बात बोलते हो, मिथ्या प्रतिज्ञ होकर नरक का रास्ता चुनते हो, विचार करके बोलो। एकदम दशरथ जी महाराज निसंग हो गए। निसंग माने संज्ञा शून्य, चेतना रहित, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। बेहोश होकर के गिर गए, ऐसा लग रहा है कि मानो दशरथ जी के अंदर प्राण है ही नहीं, श्वास चल रहे हैं लेकिन वो मृतक जैसे मालूम दे रहे थे। ऐसे करते करते रात निकल गई, प्रातःकाल हुआ। अब प्रातःकाल तो भाई वहां राजाओं का प्रातःकाल मामूली थोड़ी होता है, खूब बढ़िया वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, राजा की स्तुति की जाती है। केके ने मना कर दिया, ए सब बंद करो ये। अब वो देखने लगे आज जैसे प्रभात तो कभी जीवन में हमने सुनी नहीं, इतना अच्छा सुप्रभात, और आज ही केके महारानी जी मना कर रही है कि तुम ये सब वाद्य यंत्र बंद करो। अब बेचारे उन नौकरों को क्या पता, वो तो घबरा गए, क्या बात है, चुप हो गए बेचारे वेतन जीवी, क्या बोले। इधर इधर बस प्रातःकाल हुआ, लोग बस जल्दी 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 राजमहल की तरफ आने लगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दूसरे लोग सब, कोई छत्र लेकर आ रहा है तो कोई चमन लेकर के आ रहा है, तो कोई घोड़ों पर बैठ के आ रहे हैं, तो कोई हाथी पर बैठ के आ रहे हैं, कोई रथों पर बैठ के आ रहे हैं। वशिष्ठ जी ने जिन जिन श्रेष्ठ कन्याओं को निमंत्रण दिया वे सब आ रहे हैं, स्त्रियां हैं, बालक हैं, बूढ़े हैं, इन सब को रात भर से नींद नहीं आ रही थी। अतएव ये तो पहले ही जग जगा करके नहा धो करके प्रातःकाल की प्रतीक्षा में ही थे और ये विचार कर रहे थे कि आज राम के सिर के ऊपर बड़ा सुंदर मुकुट होगा, अचकन पहनी जाएगी, युवराज का पूरा लबादा उनके ऊपर रहेगा और जो है बड़ा सुंदर राम का बुखार बिंदु देखने को मिलेगा, सैकड़ों सैकड़ों कामदेव की शोभा भी जिनके सामने फीकी रहेगी, ऐसे हम राम के दर्शन करेंगे, गजारूढ़ होगा और सब प्रजा के बीच में वो राम सबका अभिवादन करेगा, उनके पीछे एक श्वेत छत्र रहेगा, लक्ष्मण जी उनके चवर डुलाते रहेंगे, आह ऐसे राम की शोभा देखेंगे, ऐसे राम की शोभा देखेंगे। इस आशा से जन समुदाय इकट्ठा हो गया। इधर लोग आपस में बात करते हैं, क्या बात है, हम सबको नींद ही नहीं आई, इतनी खुशी खुशी से हम यहां आए हैं, आज महाराज दशरथ को क्या हो गया, वो इतनी नींद कैसे आ रही होगी उनको, कोई कोलाहल नहीं हो रहा है, चहल पहल नहीं हो रही है, क्या बात है। सुमंत जी हम लोग तो अंदर जा नहीं सकते, आप तो बेरुक टुक अंदर जा सकते हैं, जरा आप दशरथ जी महाराज को बोलिए तो सही क्या बात है। सुमंत जी गए और जो महाराज दशरथ का खास महल था उस महल पर दबे पैर से गए और जाके उन्होंने देखा महाराज दशरथ तो यूं मूर्छित हुए से पड़े हैं। जाते ही कहा महाराज की जय हो, ये आपका दास सुमंत प्रातःकाल की वेला में आपको अनेक प्रकार की बधाइयों के साथ शुभ संवाद के साथ आपको ये निवेदन कर रहा है कि आपकी प्रिय प्रजा आपके प्रिय संकल्प की पूर्ति के लिए महल में प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे बिरदावली गाते हुए बोले, लेकिन महाराज तो है वो मुंह लटकाए हुए। ऐसे देखा तो केके की तरफ देखा, केके से पूछा, हे महाराज जी आपका कल्याण हो, महाराज दशरथ कुछ बोलते नहीं है, कुछ और जैसे ही लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं ऐसा तो हमने कभी इनका उदास रूप देखा ही नहीं था, ये तो सदा प्रसन्न रहने वाले, क्या बात है, क्या कोई विशेष घटना हो गई। हाँ सुमंत जी रात भर नींद नहीं आई ना, इस कारण से थकावट के कारण इनके आंखों के अंदर नींद झूम रही है, तुम जल्दी करो और राम को बुलाओ, क्योंकि राम 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 ऐसे ही बोलते रहे। अब आप जानते ही हो सुमंत जी इनका राम में कितना प्रेम है, उस प्रेम के कारण से इन्होंने देखा कि कल राम का अभिषेक होगा, अभिषेक होगा। देखो ज्यादा खुशी भी तो अच्छी नहीं होती ना, सारी रात खुशी में रहे, राम राम करते 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 थक गए। अब थकने के बाद इनको नींद आने लग गई, तो प्रजाग्रेण वही राजा यह स्वस्थ ही व लक्ष्य थे, ज्यादा जगने से थक गए, आप जाओ और रामम शीघ्र मान है और आप शीघ्र ही राम को लेकर के आओ। सुमन जी ने कहा महारानी जी ऐसा वैसा ये सुमंत नहीं है कि आप अपने वाक जाल में चाहे जैसी बोल दोगे ऐसे ही ये समझ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यदि राम राम करते हुए जगते नींद नहीं आती, वो जगना चेहरे पर छिपा नहीं रहता है महारानी जी, क्योंकि एक दशरथ जी नहीं आज तो सारी अयोध्या राम राम करते हुए जगी है, जाके देखो कैसा उनका चेहरा है और देखो हमारा भी चेहरा है। राम राम करें और फिर चेहरे पर उदासी रह जाए, और फिर आप मुझे आदेश देते हो कि राम को बुलाओ, महाराज के आदेश के बिना हम और किसी का आदेश नहीं मान सकते। सुमन जी ने साफ मना कर दिया, ऐश्रित्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी, मैं आपका सेवक नहीं हूं, मैं अयोध्या के राज का सेवक हूं, मुझे अयोध्या के राजा की तरफ से आज्ञा मिलेगी। बड़े उदास और टूटे हुए शब्दों से दशरथ जी ने कहा सुमंत राम को देखने की इच्छा हो रही है, अभी बुलाया। सुमंत जी गए राम जी के महल में गए और राम जी के महल में जाकर के कहने लगे शीघ्र आगच्छ भद्रंते, हे राम जल्दी आओ, जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ दो, सब छोड़ करके शीघ्र ही आप महाराज के घर में चलो, आपको बहुत जरूरी काम से अभी बुला रहे हैं। राम जी महाराज उस समय सुमंत के साथ रवाना हुए, लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी साथ में चलूंगा। भगवान ने कहा क्यों, आज्ञा तो मेरे लिए होगी ना, ना मैं आपके साथ चलूंगा, ऐसा नहीं रह सकता, मैं आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण भी चले गए, जो ही वे वहां अयोध्या वासियों के वहां पहुंचे, वशिष्ठ जी वगैरह इन सबको देखा, तो सबको देख करके उन्होंने उधर किसी से बातचीत नहीं की, सीधे महाराज के महल की तरफ चले गए। पिताजी के चरणों में प्रणाम किया राम जी ने, अरे बेटा आ गए आ गए, ऐसे बोले, हाथ यू पसारा ही था कि वो तो नीचे गिर गए, तख्त से नीचे गिर गए, बीच में नीचे गिर गए, धड़ाम से गिरे, शरीर के आवाज आई, तो राम जी महाराज दौड़ करके उनको पकड़ लिया, पिताजी पिताजी क्या हो रहा है, क्या हो गया पिताजी। अब राजा मूर्छित हो गए, कुछ बोला नहीं गया। इतनी देर में वशिष्ठ जी भी आ गए, किमर्थम रोदनम, ये रोना क्या बात को सूचित करता है। राम जी ने पूछा, हे महाव बताओ पिताजी को इतना दुख किस बात का हो रहा है, क्यों रोए, कैसे गिर गए, ऐसी दशा कभी हमने देखी नहीं थी, क्या बात है। अरे राम तुम जानते ही हो ना कि इस दुनिया में जो ज्यादा स्नेह करता है वो दुखी तो पाता है, हमारे महाराज के दुख का कारण और कोई नहीं है, राम तुम हो, तुम, मैं, मेरे से क्या अपराध हो गया, कुछ नहीं अपराध नहीं, तुम ही इसका दुख देने वाले हो, तुम्हारे कारण से तो दुख हुआ है और तुम्हारे कारण से दुख की शांति होने वाली है, तुमको कुछ राम तुमको अपने पिता के लिए हे राम कोई न कोई त्याग करना पड़ेगा, तुम्हारे यदि त्याग करने की हिम्मत हो तो तुम्हारे पिता अभी स्वस्थ हो जाए, अभी स्वस्थ हो जाए, तुम्हारे पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाओ, दुनिया में चमकाओ, थोड़ा कष्ट पाना है तो पाओ, ये भी एक तपस्या होगी, लेकिन उस तपस्या के द्वारा तुम्हारे पिता संसार में पूजनीय बन जाएंगे। कुछ नहीं है, मैंने दो वरदान इनके पास सुरक्षित रखे थे जब तुम्हारा जन्म भी नहीं था, और मैंने कहा कि जब मेरी इच्छा होगी तो आपसे दो वरदान ले लूंगी, उन दो वरदानों को पूरा करने में तुम्हारे पिता शक पका रहे हैं और उसमें तुम्हारा स्नेह ये बाधा दे रहा है और कुछ नहीं है। बेटा पुत्र शब्द को सार्थक करो। पुत्र कहते ही उसको है जो पुत नाम के नरक से रक्षा करता है, इसीलिए उसको पुत्र बोलते हैं। पुन नामकात नरकात त्रायते इति पुत्र है। ये पुत नाम का नरक कब मिलता है? जब बाप की लाश पड़ी रहती है और बेटा उसको आग नहीं देता है, बेटा कंधा नहीं देता है, अपने हाथ से वो बाप के आग नहीं लगाता, कपाल क्रिया नहीं करता, तो वो बेटा, वो पिता पुत नाम के नरक में जाता है। इसलिए अपने यहां भारतीय परंपरा में है कि भाई पिता मरे तो उसका बेटा जरूर उपस्थित रहना चाहिए। माता है, पिता है, इनके लिए पुत्र रहना चाहिए। तो भाई इसको तुम अपना पुत्र नाम सार्थक करना और महाराज को यदि सुख करना चाहते हो तो भाई तुम ये बात करो राम। केकई कैसे सपाटे से बोल रही है पार्वती। राम ने ये शब्द सुने, इतना दुख हुआ जैसे कोई छाती के अंदर शूल गड़ा दिया हो, और व्यथित होकर के केकई से कहने लगे, मां इतना कठोर क्यों बोलती हो? आपने कुछ बात तो बताई नहीं और उलाना दे रही हो। कुछ बात तो बताओ कि क्या बात है, मैं कहां इनके दुख का कारण बन रहा हूं और मेरे से कैसे दुख दूर हो सकता है, ये बताओगे तब ना पता चलेगा। मैं पिता के लिए क्या नहीं कर सकता हूं मां? यदि जहर भी पीना पड़े तो जहर पी सकता हूं, अपना शरीर चला जाए उसकी चिंता नहीं। और इस शरीर के बाद गृहस्थ में सबसे ज्यादा प्रिय अपनी स्त्री होती है, मैं सीता का त्याग कर सकता हूं, और इस शरीर को जन्म देने वाली मां कौशल्या उसका त्याग कर सकता हूं, और इस राज्य का त्याग कर सकता हूं, सबका त्याग कर सकता हूं। मेरे पिता के मन में संतोष होना चाहिए। जो पिता की बात का बिना कहे ही पालन कर लेता है, पिता कहे नहीं जान लेवे कि पिता क्या चाहते हैं, वो उत्तम पुत्र होता है। और पिता कहे और उसके बाद पुत्र काम करे, वो दो नंबर का पुत्र होता है। और पिता ने कह दिया और बेटा कहे नहीं मेरे से तो ये काम नहीं होगा, वो बेटा बेटा है ही नहीं। वो तो जैसे शरीर से मलमूत्र निकलता है ऐसे वो मलमूत्र है, वो बेटा है ही नहीं। पिता के सामने ना कभी दिया जा सकता है? तो आप मुझे स्पष्ट बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। कहके क्या सुनो राम, आप मुझे कहने के लिए बात बोलते हैं तो आप सुनने का साहस रखिए। तुम्हारा राज्याभिषेक सारी अयोध्या में प्रसिद्ध हो गया लेकिन मुझे पता नहीं चला। सारी अयोध्या में खुशियां मन रही है, चलो अच्छा है, परंतु अब मेरा वरदान यह है कि जिस अभिषेक सामग्री से आपका राज्याभिषेक हो रहा था उसकी जगह भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। तैवे भरत तो अवश्यम अभिषेक छे, अवश्य होना चाहिए। एक बात तो यह है। और दूसरा वरदान मैंने मांगा है कि तुम वल्कल वस्त्र पहन करके ऋषि मुनियों के रूप में रह करके वन में चले जाओ और 14 बरस तक तुम वन में रहो। ऋषि मुनियों जैसा तुम्हारा भोजन होना चाहिए, वैसी वेशभूषा रहनी चाहिए। ये मैंने तुम्हारे पिता से वरदान में मांगा है। अब तुमको यदि पिता को सत्य प्रतिज्ञा करना है तो तुम वन में चले जाओ और आज प्रातःकाल चले जाओ, जल्दी चले जाओ और भरत का ये अभिषेक होना चाहिए। बस ये राजा तुम बोलने में डरते हैं और मैं तुमको साफ स्पष्ट साफ बात बता देती हूं। बस भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए, इतनी सी बात थी? इसमें मेरा कोई कसूर तो बताया ही नहीं, मेरा कसूर भी तो बताओ। इतनी सी बात से तो हमारे महाराज दुखी नहीं होने चाहिए। कोई मेरे से बड़ा अपराध है मां? ओहो, तुम्हारे अंदर इतना स्नेह है, तुम भी मेरी गलती को बता नहीं रही हो, अपराध को बता नहीं रही हो। मां मां मेरा अपराध बताओ ताकि मैं उस अपराध को दूर करूं, छिपाती क्यों हूं? इतना दुख तो नहीं, छोटी सी बात से तो हमारे महाराज बड़े धीर गंभीर बड़े बुद्धिमान है, नहीं हो सकते कोई मेरे से अन्याय हुआ है, अन्याय का दंड दीजिए मां, लेकिन मुझे बता तो दीजिए क्या अन्याय हुआ। भरतस्य एव राज्यम, ओहो ये राज्य तो भरत का ही है, यदि मैं राजगद्दी पर बैठ भी जाता, युवराज पद पर बैठ भी जाता तो सारा राज्य तो भरत के हाथ में ही था, और अब ये आप भरत के हाथ में दे रहे हो, ये तो मेरे मन की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आप राजा अपने मुख से बोल नहीं रहे, क्या बात है? महाराज आप भी तो कुछ बोलिए। दशरथ जी ने कहा कि बेटा मैं तुमको कहूं वैसा तुम कर लोगे ना, मैं कहूं वैसा करो तो मैं तुमको कुछ कहूं। बोलिए तो सही पिताजी, क्या बात है? देखो राम, तुम नगर के अंदर एक ढिंढोरी पिटाओ कि मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया, वो अपने स्त्री के वशीभूत हो गया, वो भ्रांत हृदय वाला हो गया, वो कुमार्ग पर चला गया, उसका मन किसी स्त्री ने हर लिया, अतएव उसको मैंने जेल खाने में डाल दिया है, और अयोध्या का राज्य सुचारू रूप से चले इसके लिए मैंने राज्य की बागडोर संभाल ली है, ये उद्घोषणा करवाओ, मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। राम जी महाराज ने पिता के चरणों को स्पर्श किया, पिताजी क्या बात बोलते हो, आपने प्रतिज्ञा की है दो वचनों को देने के लिए, आप कुमार्ग पर हैं, आप कुमार्ग पर नहीं है, और आपने ये कहा कि मेरा मन स्त्री ने हर लिया है, नहीं महाराज, आपने देवताओं के साथ पक्ष लेते हुए राक्षसों से युद्ध करने के लिए आपकी स्त्री ने आपकी कितनी बड़ी सहायता की है, इतनी बड़ी सहायता स्त्री जित पुरुष जो है वो कर नहीं सकता है, आपने उसकी कीमत समझी है, और उसके बदले में आप अपने दो वरदान दिए हैं, आपको वरदान देने चाहिए थे, और हम आपके पुत्र हैं, हम आपके दोनों वरदानों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं, अतएव महाराज मैं वन में जाऊंगा, आप दूसरी बात मत सोचिए। अरे बेटा तू वन में चला जाएगा मुझे छोड़कर, आपको छोड़कर थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो आपके वचनों का पालन करने के लिए जा रहा हूं, तो आप ही की तो साथ हूं मैं, शरीर का साथ ही साथ थोड़ी होता है पिताजी, आपके वचनों के साथ हूं ना तो आप ही के साथ हूं। किमत्र दुखेन विभो राज्यम शासतु मेनुजे, दुख की तो कोई बात ही नहीं है, आखिर कोई शत्रु तो आकर के राज्य ले नहीं रहा है महाराज, मेरा और प्राण प्रिय और अत्यंत अत्यंत हृदय का प्रिय मेरा छोटा भाई भरत ही तो राज्य करेगा, कोई शत्रु पुत्र आता, कोई शत्रु आ जाता, अयोध्या को लूटता, अयोध्या पर राज्य करता, तब तो हम कुछ सोचते भी, मेरे ही भाई को राज्य मिल रहा है और आपके वचनों का पालन हो रहा है, मैं वन में जा रहा हूं, आपका वरदान पूरा हो रहा है, हम पुत्र होते हैं किस लिए होते हैं? पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए होते हैं ना, मेरा छोटा भाई भरत और मैं, हम दोनों भाई मिलकर आपकी दोनों बातों को पूरा करेंगे। राज्यात कोटि गुणम सौख्यम मम राजन वने सतः, हे पिताजी राज्य से 100 करोड़ गुणा ज्यादा मुझे वन में आनंद मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो आपकी आज्ञा का पालन होगा, दूसरी बात कैकेयी का प्रिय कार्य होगा, और तीसरी बात विधाता यदि यही चाहते हो तो देवताओं का काम भी बनेगा, यदि देवताओं का काम अर्थात विधाता यही चाहते हो तो देवताओं का ही काम हुआ, ये भी बनेगा, ये सब काम बनेगा हमारा, इतना आनंद है पिताजी, मैं तो अभी का अभी यहां से जाना चाहता हूं, अब मैं थोड़ी देर भी ठहरना नहीं चाहता, केवल मां से प्रणाम कर आऊं, अनुमति ले आऊं और सीता से भी मिल आऊं, उसके बाद मैं वन के लिए जाने के लिए तैयार हूं। राम जी महाराज वहां से रवाना हुए।